ஓம் சாந்தி. அட்டாரா ஜனவரி கா தின் ஹம் சப் பச்சோ கோ பாப் தாதா கே கதம் பர் கதம் ரக்தே ஹுவே சிவ பாபா நே ஜோ கஹா ஔர் ப்ரஹ்மா பாபா நே ஜோ கியா வைசா பன்னே கி பிரேரணா தேதா ஹை ஔர் யே ஹம் சப் பச்சோ கா சௌபாக்ய ஹை கி இஸ் தின் அவ்யக்த பாப் தாதா சாகார் மே ஆகர் ஹம் பச்சோ கோ அநேகானேக பிரேரணாய் தேதே ஹை ஔர் ஆகே படனே கே லியே ஹமாரா மார்க் ஔர் அதிக பிரஷஸ்த ஹோ ஜாதா ஹை. அபி பி பர்சோ 18 ஜனவரி கோ ஜப் பாபா கி முரலி சல் ரஹி தி தோ வைசே தோ பாபா ஹமாரா பாப் பி ஹை, டீச்சர் பி ஹை, சத்குரு பி ஹை, சகா பி ஹை, சாரே சம்பந்த பாப் தாதா கே சாத் ஹை. ஃபிர் பி பாப் தாதா உஸ் தின் காஸ் ஹம் பச்சோ கோ கௌன்சா பாட் பார் பார் பக்கா கரா ரஹே தே. கௌன்சா பாட் பாபா நே பார் பார் பக்கா கர்வாயா, ख्याल है सबको, सबने मुरली सुनी. जो बाबा बार बार हम बच्चों से हाथ भी उठवाते थे, हम सब अपने बचपन के दिन याद करें. स्कूल के जब छोटा बच्चा होता है तो उसको जब एबीसीडी भी पढ़ाई जाती है तो पेज पर लिखा होता है पूरा ए बी सी डी सब कुछ, और बच्चा उसके ऊपर ही लाइन के ऊपर लाइन करते हुए ए बनाता है, फिर बी बनाता है, आदि आदि, और फिर उसके बाद खाली कागज पर वो प्रैक्टिस करता है. और कितने दिनों तक वो प्रैक्टिस करके ये अल्फाबेट सीखता है, और जब ये पक्का हो जाता है फिर वो और आगे बढ़ता है. और पहले दिन का पाठ भी यही 26 अंग्रेजी के शब्द हैं या हिंदी की भी वर्णमाला आ आई जो होती है, पहले दिन का भी पाठ वो ही है. और अंतिम दिन का भी पाठ, जब कोई डॉक्टरेट हो जाए, इंजीनियर हो जाए, पीएचडी, डीलेट, डीएससी, कुछ भी हो जाए, लेकिन जितने भी किताबें हैं वो इन्हीं 26 अक्षरों से ही बनी होती हैं. उसके अंदर यही अक्षर होते हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं होता. तो इसी तरह बाप दादा भी, बाबा भी हम बच्चों को बार बार ये पाठ पक्का कराते रहे कई रीति में. कि अव्यक्त मिलन वाले बच्चे भी आए हैं, हाथ खड़ा करो. जो साकार में मिलने आए हैं और मिले हैं बाबा से, वो करो. संगम युगी वरदानी युग है, इसमें जो जो वरदान का अनुभव करते हैं वो हाथ खड़ा करो. साथ साथ बाबा ने जो कहा कि जो बच्चे इस अनुभूति में साकार और निराकार दोनों से मिलन मनाते हैं वो हाथ खड़ा करो. इस रीति से बाबा ने अनेका अनेक रीति से हमको यही पाठ पक्का कराया कि सदा ही हम बाप दादा से मिलते रहें, स्थूल सूक्ष्म भावनात्मक रीति से, मंशा से, वृत्ति से, सब रीति से हम बाप दादा से मिलन मनाते रहें. और ये मिलन जितना जितना हमारा पक्का होता जाएगा उतना क्या होता जाएगा, जितना जितना ये मिलन हमारा पक्का होता जाएगा उतना उतना हमारी बाप दादा से प्रीत और पक्की होती जाएगी. और जो बाबा ने मुरली में भी परसों बोला, क्या शब्द बाबा ने बोले ब्रह्मा बाबा की प्रीत के ऊपर। सबने मुरली सुनी तो है और बाद में पढ़ी भी होगी। अंतिम दिन तक भी बाबा ने क्या किया, प्रीत की रीत भी निभाई और साथ साथ सेवा भी करते रहे। तो जितनी जितनी जो प्रीत की रीत निभाना जानता है उतना उतना उसका कलब भर गायन होता रहता है। लौकिक दुनिया में भी जो प्रीत करते हैं दुनियावी रीति से उनका भी कितना गायन होता है, क्योंकि वो प्रीत की रीत निभाते हैं। जो कितना कई रीति से लौकिक दुनिया में कई ऐसे प्रसिद्ध आत्माएं हुई हैं, तो इसमें भी हमारी भी बाबा से प्रीत है और प्रीत वो बढ़ती जा रही है। कैसे पता चले, हर चीज का कोई ना कोई मापदंड होता है, तो वो मापदंड के आधार पर हम देखते जाते हैं कि उसमें हम फिट होते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जो प्रीत की रीत रही वो उसके आधार पर हम अपना भी मापदंड बना रहे हैं और वो मापदंड हम देखते जाए। लौकिक दुनिया में भी प्रीत का क्या मापदंड होता है, कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति की इस व्यक्ति से या इस संबंध से प्रीत है, कैसे पता चलता है। तन मन धन समय संकल्प शक्ति साधन सब उसके प्रति होती हैं जिससे प्रीत होती है। जितनी ज्यादा प्रीत होगी उतना हमारा मन उधर की तरफ होगा, हमारा धन भी स्वाभाविक रीति से उधर की तरफ लगेगा। जितना हमारी प्रीत बढ़ती जाती है जिस व्यक्ति से, उसके साथ साथ रहने का हमारा और अनुभव वो बढ़ता जाता है। उसी के साथ हमारे जो साधन हैं वो भी उसके प्रति लगते जाते हैं। तो इसलिए ये अपने को हम देखते चलें धीरे 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 कि हमारी प्रीत अगर वास्तव में बढ़ रही है बाबा के साथ, है तो सही, तभी तो यहां बैठे हैं बाबा के पास, लेकिन बाबा के साथ वो प्रीत होना ही काफी नहीं है, लेकिन वो प्रीत कैसे हम बढ़ाते जाएं और इतने तक करते जाएं कि विजय माला का मणका बन जाए, विजयी बन जाए। इसीलिए वो बाबा को के देखें, हमें ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफी सौभाग्य मिला। 1962 से लेकर 69 तक कई बार बाबा के साथ मिले, कई बार यहाँ पर ही नहीं बाहर भी, जब बाबा कानपुर आए वहां पर भी बहुत काफी समय तक बाबा के साथ, दिल्ली आए वहां पर भी बाबा के साथ रहने का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि बाबा के साथ 17 और 18 जनवरी 1969 को रहने का सौभाग्य मिला, जब बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था थी, जब बाबा की प्रीत शिव बाबा के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, वो देखने का अनुभव हुआ। क्योंकि साथ ही साथ दो दिन माउंट आबू में बाबा के साथ ही साथ 17 और 18 जनवरी को रहे, तो वो अब हम एक एक करके चेक करते जाएं कि जो ब्रह्मा बाबा में देखा और वो कितने तक हमने अपने में धारण किया। 17 जनवरी को हम सुबह बाबा के पास पहुंच गए थे और बस बाबा से जब मिले, और बाबा के मिलने का ढंग भी बड़ा अनोखा होता था। बस बाबा के पास जाते थे, बाबा ऐसे हाथ फैलाते, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, जैसे कलप के बिछड़े हुए बच्चे, बस और हम खींच करके मैग्नेटिक पुल, चुंबकीय आकर्षण में बाबा के बाहों में सिमट जाते थे। लेकिन ये तो एक स्थूल बात रही है। सबसे बड़ी अनुभूति ये होती थी कि जैसे ही बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती थी, बाबा का स्पर्श होता था, हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, बिल्कुल देह का भान रहता ही नहीं था। और जब बाबा से ऐसा मिलके, फिर पार्टी में कई लोग होते थे मिलने वाले, फिर बाबा जब ये अनुभूति कुछ क्षणों तक होती थी, उसके बाद बाबा ऐसे थपथपा के प्यार से, हाँ बच्चे आओ आओ आओ, जैसे फिर से शरीर में हमें खींच के, और फिर उसके बाद बाबा के हाथ से तोली खाते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, वो हालचाल बाबा को बताते थे। तो इसकी मुख्य बात ये रही कि बाबा ने अपने को इतना पक्का आत्मा अभिमानी बना लिया था, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए थे कि बाबा जिसे भी दृष्टि देते थे वो तुरंत ही आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाता था। तो पहला पाठ जो हम पक्का करते जाएं अपने लिए, वो ये कि क्या मैं भी जब किसी को भी मिलता हूँ, भाई बहन को, किसी पर भी दृष्टि जाती है, क्या मैं उसे भी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कर देता हूँ? वो आत्मा देह अभिमान से निकल आत्माभिमानी स्थिति में हो जाती है। तो पहला ये पाठ, ये जो है जो पहला सो अंतिम पाठ है, क्योंकि अंतिम में भी यही होगा। बाबा कहता है चारों तरफ भयंकर नजारे होंगे, हाहाकार होगा, और वो चारों तरफ हाहाकार होगा, और जो मेरे बच्चे होंगे वो जय जयकार के नगाड़े उनके मन में बजते रहेंगे। ये कब होगा? जब हम उस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति में, देह से परे आत्माभिमानी स्थिति में होंगे, तो बाहर जो कुछ भी दुख, अशांति, विनाश के दृश्य चल रहे हैं, हम उनसे न्यारे होंगे, तब हमारे अंदर जय जयकार के नगाड़े बजते। एक बात तो ये हम पक्की करते चले, जो बाबा ने, हम सब ने भी जीवन कहानी में पढ़ा है, बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, आदि आदि ये हम सब ने पढ़ा है। दूसरी बात, और ये बाबा का उस दिन भी अनुभव किया। दूसरी बात क्या अनुभव करी? जब बाबा के पास जाते थे तो ये विशेष, बाबा से मिलेंगे, बाबा से ये बात पूछेंगे, अपनी उन्नति की बात, सेवा की बात, ऐसे अलग अलग बातें बाबा से पूछेंगे, और बाबा उसका उत्तर भी देते थे। 1962 से कई बार बाबा से मिलना हुआ, बाबा से मिलते थे, जो प्रश्न पूछते थे बाबा उसका बहुत सहज रीति से जवाब दे देते थे, और वो धारण हो जाती थी। लेकिन जितना जितना बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जितनी बाबा की प्रीत शिव बाबा के साथ जुड़ती जा रही थी, उतना क्या होता जा रहा था? बाबा सब समेटते जा रहे थे। पहले बाबा से मिलते थे, बाबा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी एक एक को देते थे। फिर और बीच में देखा, जब 1966-67 वगैरह में बाबा से मिलते थे तो बाबा बस 2-3 मिनट देके कुछ हम बोलते थे, बाबा कहता था बच्चे बाबा समझ गया, बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, समस्या बतानी शुरू की है, बाबा कहता नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और उसके बाद बाबा उसका समाधान देता था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो हमने 17 और 18 जनवरी को देखा। क्या देखा? बाबा के पास जाते थे, उस समय हम आसाम में पोस्टेड थे इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ने के बाद, और वहां से आए हुए थे, वहां कोई बहन तो थी नहीं, क्लास जो होती थी वो क्लास हमें ही करानी पड़ती थी। बहुत भाई बहन आते थे वहां पर, 70-80 भाई बहन, उस समय 1968-69 की बात है, तो कई सेवा से संबंधित, अपनी स्वोन्नति से संबंधित भाई बहनों के कई प्रश्न थे, तो हम सोचते थे बाबा से ये पूछेंगे। बस बाबा के सम्मुख गए, जरा सी बाबा ने दृष्टि दी और तुरंत ही मन के भाव को पढ़ लिया बाबा ने। बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी प्रश्न पूछने की बात, एक अक्षर भी प्रश्न का कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन के भाव को बाबा नैनों के द्वारा, औरा के द्वारा तुरंत ही पढ़ लेता था और उसका समाधान दे देता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, जब दो दिन में 6-7 बार बाबा से मिलना हुआ, बड़ा आश्चर्य होता था कैसे एकदम बाबा, एकदम एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं और बाबा पूरी की पूरी बात समझ गया। तो बाद में पता चला जब हमने बड़ी दीदी दादियों से पूछा तो कि ये इस बात का सूचक है कि कर्मातीत अवस्था का, और इतनी बाबा की प्रीत शिव बाबा के साथ थी। भगवान को तो सभी बोलते हैं जानी जाननहार, भगवान तो सब जानता है। ब्रह्मा बाबा तो अपने लिए कहते थे कि ये जानी जाननहार नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा चूंकि शिव बाबा के समान लगभग बन चुका था और वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुका था, इस कारण से बाबा की स्थिति भी शिव बाबा की तरह जैसे जानी जाननहार की हो गई। और उस समय जो कुछ भी मन में होता था तुरंत बाबा पढ़ के उसका समाधान देता था। ये है जो बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क कई वर्ष से दिया हुआ है। कौन सा होमवर्क दिया हुआ है बाबा ने, जो हमारे मन से संबंधित है? बाबा ने कहा है मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। इसीलिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बाबा ने अपने मन को इतना जीत लिया था कि बाबा के अपने संकल्प जैसे कुछ नहीं, और इसीलिए जो भी व्यक्ति सामने आता था उसके संकल्प को पढ़ के तुरंत ही उसका समाधान। जैसे कहीं पर अगर जल है, पानी है, अगर हम उसमें निर्मल पानी है, कोई हलचल नहीं है, उसमें अपनी छवि देखेंगे स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल देंगे, कंकड़, लहरें पैदा होंगी, तो हमें अपनी छवि दिखाई देगी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही अगर हमारे अपने मन में कुछ भी संकल्पों की हलचल हुई तो क्या होगा, हम दूसरे के संकल्पों को नहीं पढ़ सकते, और जब दूसरे के संकल्पों को पढ़ नहीं सकेंगे तो उनकी इच्छाओं को कैसे पूर्ण कर सकेंगे, जो पार्ट अभी बाबा हम बच्चों के द्वारा चलाना चाहते हैं। एक एक बच्चा दाता, दानी, महादानी, वरदानी के रूप में दुनिया के सामने प्रकट हो। तो इसलिए अभी हमारे द्वारा अगर हम चाहते हैं पार्ट शिव बाबा का, बाप दादा का जो चला वैसा पार्ट चले, तो हमें अपने मन के संकल्पों के ऊपर भी विजय प्राप्त करनी है। और इतने तक विजय जो उसके अंदर कोई भी, बाबा ने कहा बच्चों के मन में विकारी संकल्प तो नहीं चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं फिर भी, क्यों, क्या, कैसे आदि आदि। तो बाबा की ये कर्मातीत अवस्था का ये दृश्य 17-18 जनवरी को हमने कई बार जीवन में अनुभव किया, उन दो दिनों में विशेष करके, जो भी बाबा के अंदर मतलब सामने जो आता था उसमें संकल्प होते थे उसका। और जब ये हम पाठ को पक्का कर लेंगे, ऐसा हमारे साथ भी होगा जो बाबा के साथ हुआ, तभी तो हमारे भक्त द्वापर युग से जो हमारी मूर्तियां बनाएंगे मंदिरों के अंदर, तो हमारी मूर्तियों से भी अपनी संकल्प सिद्धि का अनुभव करेंगे। हमारी मूर्ति के सम्मुख आके भक्त मांगेंगे, हे भगवान धन दो, विद्या दो, बच्चा दो, आदि आदि जो भक्तों की इच्छा है, और بس ہم دیوی دیوتاؤں کا تو سدا وردانی ہاتھ ایسا ہی رہتا ہے، اس لیے وہ یہ انوبھو کریں گے ہاں دیوتا نے میری اچھا کو پورن کیا، جو میرے اشٹ دیو ہیں، اشٹ دیویاں ہیں۔ اسی لیے ایک ہمیں اپنے سنکلپ، برہما بابا نے بھی 1936 میں انوبھو کیا۔ کیا کیا انوبھو؟ کہ من جو ہے بڑا چنچل ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ہم سب کا بھی شروع میں یہی انوبھو ہوتا ہے جب گیان میں آتے ہیں، بس بھکتی میں بھی یہی انوبھو ہوتا ہے، بھکتی کرنے بیٹھتے ہیں من بھاگ جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں، یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیا کریں من بڑا چنچل ہے، بھکتی میں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بابا نے ایسے ہی چھوڑا نہیں، بابا نے کیا کیا پتا ہے؟ بابا نے من کو پتر لکھا، اور یہ پتر لکھا کیوں؟ کیونکہ بابا نے کہا جب تک من میرے وش میں نہیں ہوگا تب تک میری پریت کی ریت شیو بابا کے ساتھ پوری کی پوری جتنی بابا چاہتا ہے اتنی جڑے گی نہیں، اور تب تک جو لکشیہ ہے اس کی پراپتی میں کٹھنائی کا انوبھو ہوتا رہے گا۔ تو یہ پریت کو پکا کرنے کے لیے بابا نے کیا کیا؟ من کو پتر لکھا۔ بابا نے تو سندھی میں پتر لکھا، اس کی ایک کاپی ہم پرانے بھائی بہنوں کو ایک ورشٹ بھائی نے دی تھی ہندی میں کر کے، اس کی کچھ لائنیں ایسے تھے۔ بابا نے پتر لکھا جب من کو کہ ہے من، میں آتما راجا ہوں، تو میرا منتری ہے، لیکن تو اتنا بلشالی ہو گیا، تو نے مجھ آتما راجا کو اپنے وش میں کر لیا، میں کمزور ہو گیا، تو بلشالی ہو گیا، تو جہاں جہاں کہتا رہا میں تیرے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، میں آتما راجا ہوں لیکن تو من منتری ہوتے ہوئے بھی مجھ راجا سے زیادہ شکتیشالی ہو گیا۔ لیکن ہے من، اب میں تجھے کہہ دیتا ہوں کہ اب میں تیرے پیچھے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں راجا ہوں، تو منتری ہے، تجھے میری بات ماننی پڑے گی، اور اب میں آتما راجا پنہ اپنی شکتی میں استھت ہو گیا ہوں، ہو رہا ہوں، اب تجھے میری بات ماننی پڑے گی، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ جب بابا کو گیان ہوا، ساکشاتکار ہوئے آتما کا، پرماتما کا سب گیان، تب بابا نے جیسے یہ پکا کیا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا میں بھی من کو اس طرح آرڈر کر کے اپنے وش میں کرتا ہوں کہ ہے من، اب میں تیرے کہنے پر نہیں چلوں گا، تجھے میرے کہنے پر چلنا پڑے گا، کیونکہ میں راجا ہوں، تو منتری ہے۔ اسی طرح بابا نے بدھی کو بھی پتر لکھا کہ ہے بدھی، تو بھی من کے کہنے پر من کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور تم دونوں نے مل کر مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ تم دونوں جہاں من اور بدھی کہتے رہے، میں تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا۔ لیکن اب میں تجھے بھی کہہ دیتا ہوں کہ اب میں آتما راجا پنہ اپنی شکتی میں استھت ہو گیا، اب تجھے میرے کہنے پر چلنا پڑے گا۔ تو یہ ہم اپنے کو چیک کرتے چلیں، اور جتنا جتنا من ہمارا شکتیشالی ہوتا جائے گا، ہمارے کہنے پر چلے گا، اتنا ہماری پریت بابا کے ساتھ اور پکی مضبوط ہوتی جائے گی، اور وہ پریت ہم برہما بابا کی طرح نبھاتے چلیں گے۔ تو ایک یہ ہم اپنے ساتھ اپنے کو ضرور یہ چیک کرتے چلیں کہ کیا میری پریت برہما بابا کی طرح شیو بابا کی۔ اور اس کا سادھن بابا نے بڑا اچھا بتایا، کیا سادھن ہے؟ ہم سب چاہتے تو ہیں ہمارا من نہ بھاگے، یوگ میں بھی بیٹھتے ہیں، ہمارا من بنا ہماری اچھا کے ادھر نہ جائے، لیکن چلا جاتا ہے۔ کوئی کاریہ ہوتے ہیں پڑے ہوئے، ان کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ویکتی جن کی طرف وشیش سنے ہے ادھر چلا جاتا ہے، یا ان ویکتیوں کی طرف جن پر سنے نہیں ہے، کچھ تا تھوڑی بہت گرنا عرشا یا کوئی ایسی بھاونا ہے ان کی طرف چلا جاتا ہے. جہاں پر بھی ہماری بدھی ہوتی ہے من بار بار چلا جاتا ہے اور سمے ویسٹ ہو جاتا ہے. ہم سب کا یہ انوبھو ہے. اسی لیے اس کو ایسا نہ ہو تو کیا کریں, اس کا سادھن بھی بابا نے بتایا ہے بڑا سہج. کیا سادھن ہے؟ بابا نے ادھارن دیا, دیکھو جیسے کوئی بڑا پریسیڈنٹ ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, جب وہ اپنی سیٹ پر استھت ہوتا ہے, سیٹ ہوتا ہے, تو سب اس کا آرڈر مانتے ہیں. لیکن مانو وہ ریٹائر ہو گیا یا اپنی سیٹ پر نہیں رہا یا ٹرانسفر ہو گیا چلا گیا, کوئی اس کا کہنا نہیں مانتا, آرڈر نہیں مانتا, کیونکہ سیٹ پر نہیں ہے. ایسے ہی ہم آتما بھی جب اپنے سمان کی سیٹ پر استھت نہیں ہوتی ہیں تو یہ من بھی ہمارا کہنا نہیں مانتا. ہم چاہتے ہیں من نہ بھاگے, مانو ہمارا من بھاگ رہا ہے. ہمیں سمیٹنے کی شکتی کی ضرورت ہے, سمیٹے, لیکن ہم کہتے ہیں آؤ سمیٹنے کی شکتی آؤ, لیکن وہ شکتی نہیں آتی ہے. من بھاگتا رہتا ہے, آئی بھی ایک دو منٹ کے لیے, پھر من بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے اپنے کو سمان کی سیٹ پر سیٹ نہیں کیا. اسی لیے ابھی جب کبھی ہم دیکھیں کہ میرا من بہت بھاگ رہا ہے, کوئی پرستھتی وات یا کسی کے سنسکار سوبھاؤ کے ٹکراؤ کے وش کہیں بھاگ رہا ہے, پرانے سوبھاؤ کی سنسکار کی سمرتی سے اس میں بھاگ رہا ہے, تو کیا کریں؟ جو بابا نے اتنے ہمیں مہان سمان دیے ہوئے, بس بابا نے کہا میں وجئی رتن ہوں, کلب کلب کی وجئی آتما ہوں. بابا کلب پہلے بھی آپ نے وجئی بنایا تھا, ابھی بھی آپ وجئی بنا رہے ہو, اور کلب کلب ہم ایسے ہی وجئی بنتے رہیں گے. بابا ہم آپ کی مستک بنی ہیں, آپ کے دل تخت پر وراجمان آتما ہے. بابا کے ساتھ ہم ایسے جو ہائیسٹ سٹیج سمان کی ہے اس کو ہم پنہ سمرتی میں لائیں, اور جب اس میں تھوڑی دیر استھت ہو جائیں گے اس کے بعد جیسے ہی ہم جس شکتی کو آرڈر کریں گے آپ دیکھو گے وہ شکتی آئی, اور اس کے بعد بس اس جو کمزوری ہے اس سے ہمیں ترنت ہی مکتی مل جاتی. بابا نے کتنی بار کہا ہے کہ بابا تو بچوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے, لیکن بچے مجھے یوز کرنا جانتے ہی نہیں, بہت کم یوز کرتے ہیں. جب کبھی آوشیکتا ہو بابا کی, بس بابا نے کہا سچے دل سے کہو بابا بابا آؤ میری مدد کرو, بابا یہ کام آپ کو کرنا ہے, بابا بابا اس میں میں اس پرستھتی میں ہوں, ایسی استھتی میں ہوں, چاہے استھول سچویشن ہو, ستھول ہو چاہے سوکشم ہو, بس ایک بار دو بار. ہمارا تو جیون کا انیک انیک بار کا انوبھو ہے کہ کوئی بھی ایسی پرستھتی ہوتی ہے بابا کا اس پرستھتی سے نکالنے کا ڈھنگ بالکل انوکھا ہے. انوکھی ریتی سے بابا اس پرستھتی سے پار کرا دیتا. بس بابا کا آواہن کرنے کی ضرورت ہے. بابا تیار بیٹھا ہے لیکن ہم آواہن کریں گے تبھی تو بابا آئے گا. اس کو آپ خوب یوز کرو دن میں دو بار چار بار, لیکن سچے دل سے, اور پھر آپ دیکھو کس ریتی سے بابا کے, حالانکہ اس پرستھتی سے نکالنے کے ڈھنگ اپنے انوکھے ہیں, بالکل ہی الگ ہے, ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اس ریتی سے بابا ہمیں اس پرستھتی پر وجے پراپت کرا دے. لیکن یہ پکا ہے کہ بابا ہمیں اس پرستھتی سے نکال لے گا. تو اسی لیے بابا کو یوز کرنا ہمیں اپنے اندر اوشیہ آنا چاہیے. ایک بابا نے یہ بتائی ہے بات, کیونکہ بابا نے کہا ہے ابھی بچوں کے سامنے نا دو پیپر وشیش آئیں گے. ویسے تو انیک پیپر بابا نے بتائے ہیں, پرانے سوبھاؤ سنسکار کا پیپر ہے, پانچ وکاروں کا, پرکرتی کے پانچ تتوں کا پیپر ہے, اور انیک پرکار کے پیپر ہم بچوں کے سامنے ہیں, آوشیک وستویں ہیں ان کے ابھاؤ کا پیپر. بابا نے کہا جل ہوگا پینے لائق نہیں ہوگا, بھوجن ہوگا खाने लायक नहीं होगा, जहरीला हो जाएगा। ये सब स्थूल सूक्ष्म पेपर तो बहुत आने हैं, लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा बच्चों के सामने दो पेपर विशेष। कौन से दो? एक है बच्चों के तन का पेपर, शरीर का पेपर, क्योंकि इतने अनेक अनेक जन्मों का, 63 जन्मों से जो विकर्म हमने किए हैं, वो विकर्म हमें जितना योग लगाना चाहिए उतना योग नहीं लगाते तो भस्म नहीं होते। तो योग, रोग या भोग, भोगना के द्वारा, शारीरिक भोगना, इनके द्वारा वो पेपर हमारे पास होंगे। एक है तन का पेपर सबके सामने। जो युवान है ये ना सोचे हम तो युवान है, हमारे सामने कौन से बीमारी के पेपर आएंगे, नहीं। आत्मा तो वही पुरानी है ना 63 जन्मों की। ऐसे ऐसे पेपर जो सोचे भी नहीं होंगे वो तन के पार करने। उसका सहज साधन क्या है? क्या है उसका सहज साधन? बाबा ने कहा और बाबा ने दिखाया, मम्मा ने दिखाया। बाबा का हम लोग देखते थे, बाबा की उम्र काफी थी ना, 93 इयर्स, खांसी आती थी कई बार, खांसते खांसते आंखें भी गीली हो जाती थी। हम लोगों को लगता था जैसे बाबा को बहुत तकलीफ है ना? लेकिन दूसरे ही क्षण देखते थे ना? बाबा उस परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति से बदल देता था। पास में अपने हिस्ट्री हॉल में देखा होगा, ऊपर पांडव भवन में गए, ऐसे 3 संदलियां पड़ी हैं। एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक पे मामा बैठती थी, बीच की संदली खाली होती थी। जब भी कोई पार्टी आती थी, बच्चे आते थे, उस पर बैठ के अनुभव सुनाते थे। बस बाबा मामा के बीच में ऐसी सुरक्षा का ऐसा अनुभव होता था, आनंद का, कि जैसे संसार की सब चीजें पा ली। फिर एक के बाद एक अनुभव वगैरह सुनाते थे। तो बाबा के पास इधर एक तरफ ट्रांसलाइट का चित्र होता था, कृष्ण का ट्रांसलाइट का, तो बस बहुत खांसी आती थी, लगता था जैसे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा, देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है, है? और कितना पुराने शरीर में तकलीफ होती है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, विष्णु बनेगा, बस कोई तकलीफ नहीं, एकदम आत्मा जो है कंचन निरोगी काया बिल्कुल होगी, इतने 21 जन्मों तक कोई भी प्रकार का वो नहीं। और बस बच्चे सभी, तुम बच्चों को भी ऐसी खुशी होनी चाहिए कि बस जो कोई गम है, तकलीफ है, वो खुशी उस गम को, तकलीफ को खा जाए। और इसीलिए बाबा कहता था बच्चे क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गिया मारनी चाहिए। समझते हैं खग्गिया? बाबा दिखाता था बच्चे हो ऐसा करके, बाबा ना दिखाता था। और एक क्षण पहले जो लगता था कि बाबा को खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, दूसरे ही क्षण बाबा के चेहरे पर इतनी खुशी की लहर, और चेहरे पर लगता था जैसे विष्णु कृष्ण का, छोटा कृष्ण का स्वरूप, नारायण का स्वरूप, कोई तकलीफ नहीं। तो ये है अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय। और ये तब होगी जितना जितना हमारी प्रीत जो है, क्योंकि शिव बाबा तो परिस्थितियों से परे है, तो इस कारण से जितना हमारी प्रीत होगी बाप समान, जैसे पारस पत्थर को बोलते हैं ना, पारस पत्थर के संपर्क में जो आता है वो भी पारस बन जाता है, तो शिव बाबा तो पारस है, तो उनके संपर्क में बुद्धि से हम जितना आते जाएंगे वैसा पारस बनते जाएंगे। और फिर ये कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, बल्कि हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी जो परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगी। ये बाबा का प्रत्यक्ष रूप देखते थे, बस देखते थे, और दूसरे ही क्षण खांसी तो कहां गई, कोई भी चेहरे पर दुख शांति की लहर नहीं, दुख की, और बस एकदम चेहरा बाबा का खिला हुआ वैसा का वैसा। और इसके लिए क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा बताते थे बच्चे एक अभ्यास हम सब बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। कौन सा अभ्यास? शरीर में आने का और जब चाहे शरीर से जाने का। अब बाबा को यह अभ्यास इतना पक्का था, कोई पार्टी आती थी बाबा से मिलती थी, तो बाबा का मिलने का टाइम या तो झोपड़ी में होता था या हिस्ट्री हॉल में, या कभी कभी बाबा कमरे में मिलते थे। तो मानो टाइम दिया हुआ है, پارٹی آئی ٹیچر بہن، بابا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی کا انتظار ہو رہا ہے، پارٹی کا سمے ہوا، ٹیچر بہن آتی تھی، دیکھتی تھی بابا آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے لیکن بابا کا دھیان نہیں، ٹیچر سامنے آ کے بھی کھڑی ہو گئی، پھر بھی بابا اپنی مستی میں مگن ہے، دیہ سے نیارا ہے. پھر ٹیچر کہتی تھی بابا بابا، تو بابا کو ایک جھٹکا سا لگ، جیسے کئی بار لگتا تھا، کوئی یہ نہیں کہ ساکشاتکار میں ہے یا دھیان میں ہے، لیکن شریر سے یہاں ہوتا تھا، بدھی سے بابا نیارا. پھر بابا کھچ کر آتے تھے اور بابا اچھا بچی آ گئی، آؤ آؤ، پارٹی بیٹھتے تھے، سب ملتے تھے، بابا سے روروان ہوتی تھی، بابا ٹولی کھلاتے تھے، ایک پارٹی جاتی تھی اور دوسری کے آنے کا ٹائم میں اگر کچھ ٹائم ہوتا تھا بیچ کا، پھر بابا دیہ سے نیارا ہو جاتا تھا. تو دیہ میں آنے کا ابھیاس اور دیہ سے ڈیٹیچ ہونے کا ابھیاس، یہ جتنا جتنا پکا ہوتا جائے گا اتنا اتنا ہمارے شریر میں جتنی بھی ویادھی ہوگی، بڑی سے بڑی ویادھی ہوگی، روگ ہوگا، کشٹ ہوگا، لیکن وہ دکھ بالکل محسوس نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آتما جیسے شریر سے جب ڈیٹیچ ہو گئی، انوبھو کرنے والی تو آتما ہی ہے. جب شریر میں جیسے کوئی آپریشن ہوتا ہے تو انستھیسیا دیتے ہیں یا کوئی انجیکشن لگا دیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ڈیٹیچ ہو گئے تو شریر کو کاٹا کرتے کاٹتے ہیں، خون نکل رہا ہے کچھ بھی، لیکن آتما کو دکھ کی انوبھوتی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ اس سمے ڈیٹیچ ہے. وہ تو وگیان کے سادھن سے تھوڑے سمے کے لیے ڈیٹیچ کر دیا، لیکن سائلنس کا سادھن تو اس سے بھی بڑا ہے. تو بابا کہتے ہیں اس انوبھو کو بڑھاتے جاؤ اور انت میں یہی انوبھو کام آئے گا کہ ہم کتنا سمے شریر سے ڈیٹیچ رہتے ہیں اور کتنا سمے شریر میں آنے کا ابھیاس ہے. تو یہ ابھیاس پکا کرتے رہے. اور دوسرا پیپر بابا نے کا پریوار کا پیپر، ایک شریر کا پیپر، دوسرا برہمن پریوار کا پیپر. کیوں؟ کیونکہ جتنا جتنا برہمن پریوار بڑھتا جاتا ہے نا، تو انیک پرکار کی آتما بابا نے کا راجدھانی استھاپن ہو رہی ہے، راجہ مہاراجہ بن رہے ہیں، تو نکٹ راج پریوار کے بھی بچے بن رہے ہیں، تو سادھارن پرجا بھی بن رہی ہے، تریتا کے انت تک کی بھی پرجا بن رہی ہے. تو کیا ہوگا جب سارے پریوار کے ساتھ رہیں گے، تو لگے گا کئی آتماؤں کو دیکھیں گے، ارے یہ آتما اتنی 25 سال پرانی، 40 سال پرانی، اس کے اندر بھی یہ کمزوری. بس اس کو دیکھ کر کے ہمارے من میں بھی کمزوری کے بھاو آ جائیں گے. تو بابا نے اس کے لیے کہا ہے کسی بھی آتما کو دیکھو، اس کا پارٹ دیکھو. ایک تو بات یہ، بابا کے شبد یاد رکھو کہ بابا نے ایک ایک بچے کا بابا نے سلیکشن کیا ہے، ایک ایک بچہ میرا، سادھارن سے سادھارن بچہ بھی جو دیکھنے میں آتا ہے وہ آج کے پردھان منتری اور راشٹرپتی سے بھی مہان ہے. کیوں؟ کیونکہ بھگوان نے اسے چنا ہے. تو اپنے کو ہم سادھارن نہ سمجھیں، بھگوان نے مجھے چنا ہے، میں بھگوان کی نظر میں ہوں. بس جتنی یہ سمرتی ہوگی اتنا ہمیں دوسری آتما کے کمی کمزوری وہ نظر ہی نہیں آئے گی. اور دوسری بات اس میں بابا نے کہی ہے، کسی بھی آتما کو دیکھو نا، اسے ایک کال کی درشٹی سے نہیں دیکھو. جب ہم کیول ورتمان کال کی درشٹی سے دیکھتے ہیں، ارے یہ آتما اتنی پرانی ہے، اس میں یہ کمزوری کے سنسکار، ایسا کیا ایسا بھی ہوتا ہے گیان میں یگیہ میں؟ نہیں، بابا نے چونکہ وہ بھگوان کی چنی آتما ہے اور بھگوان نے چنا ہے، تو ہم اسے جب تین کال کی درشٹی سے دیکھیں گے تو دیکھیں گے اس سمے اس کا یہ بھلے کمزوری کا پارٹ چل رہا ہے، لیکن یہ وہی ڈبل تاج دھاری آتما ہے جو ستیوگ میں ڈبل تاج دھاری، جو پویترتا کا اورا وہ تھی، اور ابھی اس سمے یہ پارٹ چل رہا ہے، پھر اس کا پارٹ پھر سے مہان ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھگوان نے چنا، اور بھگوان کا سلیکشن کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. بھگوان کا سلیکشن کیوں؟ کیونکہ بھگوان تو تینوں کال، ہر آتما کے تینوں کالوں کو جانتا ہے، اور اس نے سلیکٹ ہی ان آتماؤں کو کیا ہے جو تینوں کال میں مہان آتمائیں ہیں. تو اس لیے भगवान के सिलेक्शन को हम कभी भी चुनौती ना दें। अरे भगवान आपने ऐसी आत्मा को चुना, नहीं, ये तो वैरायटी ड्रामा है। और ड्रामा में भी वही ड्रामा अच्छा लगता है, कौन सा, जिसमें वैरायटी होती है। क्या ड्रामा में सभी के, फिल्म में सबके पार्ट एक जैसे होते हैं? कोई हीरो हीरोइन है, कोई विलेन है, कोई कॉमेडियन है, कोई नाचने गाने वाला है, अलग अलग सबके पार्ट हैं, इसीलिए वैरायटी ड्रामा है। और इसीलिए बाबा ने कहा ये ड्रामा मुझे अति प्रिय है, बहुत प्रिय है, और जो भगवान को प्रिय है वो हमें प्रिय है। इसीलिए कभी भी ड्रामा के किसी सीन को देख के हम अपने मन में ये ना करें अरे ऐसा क्यों, नहीं, इससे बढ़िया इस ड्रामा में हो ही नहीं सकता था, भगवान ने बेस्ट ड्रामा ये जैसे बना हुआ है, इसलिए हम सदा उसको देखें। तो एक ये दोनों पेपर से निकलने का बड़ा सहज साधन ये बाबा ने बताया है, शरीर के पेपर और परिवार के पेपर। और साथ में क्या करें, देखो 18 जनवरी का आपको अंत में कुछ बात बताते हैं। 18 जनवरी की सुबह बाबा आए, मॉर्निंग क्लास में बाबा ने आके योग कराया। उस दिन क्लास नहीं चलाई, मुरली नहीं चलाई, शायद वो ही एक दिन था जिस दिन बाबा ने मुरली नहीं चलाई पूरा। और तो उसके बाद बाबा दृष्टि दे करके सबको चले गए। 18 जनवरी की रात्रि क्लास वैसे तो नॉर्मल केस में लगभग 8:30-9 बजे होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने एक भाई को बुला के जल्दी कहा कि भाई सबको इकट्ठा कर लेना, आज बाबा क्लास जल्दी कराता है। और उस दिन बाबा जल्दी ही क्लास में 7:30 बजे के करीब ही आए, सब भाई बहन भी आ गए। बाबा का उस दिन बिल्कुल वही फरिश्ता चमकता कर्मातीत अवस्था के निकट बाबा आए। 18 जनवरी की 1969 की बात आपको बताते हैं, हम भी सम्मुख बैठे हुए थे, बाबा ने मुरली चलाई। और उस दिन बाबा की मुरली में एक बार भी न बाबा को, बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन न एक बार भी बाबा को खांसी आई, न एक बार भी गला साफ करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रीत की रीत अपनी पराकाष्ठा को पहुंच चुकी थी, कर्मातीत अवस्था के निकट बाबा पहुंच चुके थे। और जब ऐसी स्थिति होती है तो सारे शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी शरीर का कर्म भोग उस समय नहीं उठ सकता, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी महान हो जाती है जो शरीर के सारे कर्म भोग चुक्त होने का अनुभव होता है। तो उस दिन की आप मुरली सुनो, 18 जनवरी की साकार मुरली बाबा की, एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न एक बार गला साफ करने की जरूरत पड़ी। और उसके बाद बाबा ने पूरी मुरली चला के, देखो हम सम्मुख बैठे हुए थे, साधारण बात बताते, हमारे मन में ये संकल्प आया बाबा के सम्मुख बैठे, बाबा कुछ हमारी उन्नति के लिए कुछ शब्द बोले हमारे लिए। बस जैसे ही संकल्प आया, और भक्ति में भी कहा गया है भक्त के मन में इच्छा होती है तो भगवान सदा उस इच्छा को पूर्ण करते हैं, और कुछ और नहीं, तथास्तु कह के हमारे मन में इच्छा हुई, बाबा कुछ बोले, तुरंत ही बाबा ने मुरली में नाम लेकर के बस तुरंत ही एकदम कुछ महावाक्य उच्चार दिए। देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, आदि आदि कुछ महावाक्य ऐसे उच्चार दिए जो सदा हमारे जीवन के लिए बस मार्ग प्रदर्शक बन गए, और उसके आधार पर ही जैसे हम सब बच्चे चल रहे हैं। तो हमें भी जब हम भी अपनी कर्मातीत अवस्था पर ऐसे समय पहुंचेंगे, हमारे सामने भी जो हमारी भक्तात्मा है, हमारी प्रजा आएगी, ये हमारी ड्यूटी हो जाएगी कि हम उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। इसके लिए हमें अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है, और ये तब होगा जितना जब हमारा ये शरीर प्रकृति के तत्वों को भी हमने इतना पावन बनाया होगा। बाबा उसके बाद उठ के कमरे में गए और हम सब ने जैसा देखा है सुना है, बाबा के हाथ में दादी जी का हाथ और फिर बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखा हमने। क्या आश्चर्य? बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, शाम को 18 की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 तारीख की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा के शरीर का अग्नि संस्कार किया गया। लेकिन इतने 65 घंटे के बाद भी बाबा का शरीर, न कोई इंजेक्शन दिया गया, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया, कुछ नहीं, हम तो वहीं पर थे, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ। और अक्सर जब आत्मा चली जाती है तो शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, लेकिन जब हम लोगों ने उधर देखा, बाबा को स्नान वगैरह कराया गया, लाया गया, बिल्कुल बाबा का शरीर भी जैसे कोई स्टिफ नहीं और काफी हद तक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, चमकता शरीर, लगता था जैसे बाबा सो रहा है, हमेशा की तरह उठ के बोलेगा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक, जो बाबा कहता है प्रकृति के 5 तत्वों को योगदान करो, उनके साथ वार्तालाप करो। अब बाबा ने प्रकृति के 5 तत्वों से बने शरीर को भी, इन प्रकृति के तत्वों को भी इतना पावन कर लिया था कि बस अंत समय तक ये प्रकृति के 5 तत्वों का बना शरीर इसने पूरा साथ दिया, कुछ भी न दुर्गंध आई, न कोई काला पड़ा, न कोई स्टिफनेस इतनी ज्यादा, और बस बाबा का शरीर ये 5 तत्वों पर विजय का प्रतीक। ये तो फिर एक बहुत बड़ा विषय है कि कैसे हम भी ऐसे अंत में, जो बाबा का ये इच्छा मृत्यु का है, क्योंकि बाबा जब गए 18 जनवरी की मुरली सुना करके दरवाजे तक गए, दरवाजे पर जाके बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले थे, विदा लेता है, छुट्टी लेता है, नहीं, बाबा को मालूम था जैसे आज ये बच्चों से अंतिम साकार मिलन ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा हो रहा है, शिव बाबा कर रहा है, इसीलिए बाबा बच्चों से छुट्टी लेकर चले। हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करें कि हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा। और जब इच्छा से शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल मानसिक रीति से तैयार होंगे, इच्छा से शरीर छोड़ा, अब उस समय कोई संकल्प विकल्प नहीं। इसीलिए जो गायन है, अंत मते सो गति का, अंत में बस ऐसी स्थिति होगी तो हमारी भी गति हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए जितना हम ये आगे, ये तो कुछ बातें हमने जो आंखों से देखी, कुछ बातें सुनाई, लेकिन बाबा की ऐसी अनेक बातें जो आप सुनते आ रहे हैं, और किस प्रकार से बाबा अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके चले गए, लेकिन हम बच्चों को, वो भी तो साधारण ही था ना शरीर में, इसीलिए बाबा की तरह हम लोग भी अपने को इतना पक्का कर लें कि जो बस विजय की तरफ बढ़ते चलें और बाबा की तरह विजयी रतन बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।